नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इस प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट है उसमें काफी उछाल आया है प्राइसेस में इन सभी चीजों में, और हमारी फ्रेट और रिलेटेड कॉस्ट भी बढ़ी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इंपैक्ट हुआ है, शुरू में हमारा जो प्रोडक्शन है थोड़ा इंपैक्ट हुआ 30,000 से 35,000 टन पर डे के हिसाब से, और इसी सिचुएशन के रहते जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो हमारी अपकमिंग खरीफ सीजन की है वो 390 लाख टन है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है।
देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है, और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है।
निर्वाचन आयोग द्वारा आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत का उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना और राज्य के विकास को उजागर करना था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के अंतर्गत कंपनियों को मंजूरी पत्र सौंपे। कुल 29 आवेदनों को 7,100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने आज कहा है कि देश के 99.92% गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों के 100% गांवों में भी बैंकिंग की सुविधाएं मौजूद हैं। लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा शुरू हुई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने नरेंद्र मोदी सरकार, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के प्रयासों की सराहना की है। श्री शिंदे ने कहा कि देश के 200 जिलों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब सिर्फ 3 जिलों तक सिमट गया है। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसिरी के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनके निधन की पुष्टि कर दी है। इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने दावा किया था कि इसराइली रक्षा बलों के सटीक हमलों में ईरानी नौसेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ नौसेना कमांडर मारे गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सभी को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। 2 महीने तक चलने वाला ये टूर्नामेंट 31 मई तक जारी रहेगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।